गाथा, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं अशोक कुमार की लिखी कहानी Who Cares। वो मेरे सीने से लगकर रो रही थी, मुझे उसकी तकलीफ से बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद मेरी मजबूरी यह थी कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। ठाणे में वृंदावन सोसाइटी नई नई बनी थी। जिस बिल्डिंग में मैं रहने पहुंचा उसके बगल वाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर भागवत परिवार रहता था, जिनसे मेरा परिचय राशन कार्ड में पता बदलवाने के सिलसिले में हुआ था। मैं नासिक से अपना तबादला होने के बाद राशन दफ्तर के कई चक्कर काट चुका था, न कार्ड मिलता था न पता बदलता था। यह बात 1995 के आसपास की है, जब राशन कार्ड ही पते का एक अहम प्रूफ होता था। यूं ही पड़ोसियों से जिक्र के दौरान पता चला कि अनिकेत भागवत पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी हैं और शहर में उनका बहुत रसूख है। सुझाया गया कि वे इस मामले को 2 मिनट में सुलटा देंगे। अनिकेत पहले तो वैसे ही मिले जैसे कि मुंबई के लोग शुरू शुरू में मिलते हैं, बिल्कुल इम्पर्सनल तरीके से। लेकिन 2-3 बार के बाद हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। राशन ऑफिस के लिए उन्होंने कहा, तुम्हारा काय करायचे तिकड़े, धरी रहा, मी सांगेन तेला, तुमको वहाँ जाके क्या कहना है, घर में रहो, मैं उससे कह देता हूँ, हो जाएगा काम। और वाकई 3 दिन गुजरे होंगे कि शाम के करीब 7 बजे मेरे पास एक फोन आया कि दूसरे दिन मुझे राशन ऑफिस बुलाया जा रहा था। आपको रजिस्टर में साइन करना पड़ेगा, इसलिए आना पड़ेगा, नहीं तो मैं लेके आ जाता आपका राशन कार्ड आपके घर पे। राशन कार्ड मिलने के 2 दिन के बाद अनिकेत के घर मिठाई लेकर मैं शुक्राना अदा करने गया। क्या यार मिठाई, अरे कुछ ब्लैक डॉग, कुछ ब्लू लेबल। बोलने के बाद जिस तरह उसने खाका लगाया, उससे लगा कि ये सब वो मजाक में कह रहा था। उसके पास देशी विदेशी शराबें भरी पड़ी थी। पीने वालों की पीने वालों के साथ दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है, हमारी भी हो गई। हफ्ते में 2 बार तो जरूर मुलाकात होती, कभी मेरे यहाँ कभी उसके घर। मैं अकेला रहता था, बीबी ने दूसरा घर कर लिया था और माँ मेरी रही नहीं थी। अकेलापन भी था और मन की बातें भूलने की कोशिश भी थी। अनिकेत अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। हमारा मामला घर का सा हो गया था। अनिकेत का लड़का मंदार उस वक्त शायद 8वें दर्जे में था और लड़की मीनाक्षी तब 11वीं में थी। दोनों बच्चे अक्सर मेरे यहाँ आ जाते थे, कॉफ़ी पियेंगे अंकल, फिर कभी कभी उनके दोस्त भी उनके साथ आने लगे, जिनसे अच्छी तरह जान पहचान हो गई। वे रास्ते में बाजार में भी मिल गए तो हाय हेलो हो जाती थी। अनिकेत से मेरी उम्र कम थी और मैं बच्चों में जवान होते लोगों से मेरी अच्छी पटती थी, लेकिन फिर भी था तो मैं उनके लिए अंकल ही। हालांकि ये लफ्ज सिर्फ बोलने का था, रिश्ते हमारे एकदम दोस्ताना थे और इन नौजवानों और मेरे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं थी जो छुपी हो। घड़ी या चूड़ी की पसंद से लेकर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तक की। मैं उस समय एक कामयाब टीवी चैनल में प्रोड्यूसर था। वो लोग मुझसे ये पूछ पूछ कर खुश होते थे कि आज मैं किस हीरो या हीरोइन से मिला। शायद उनका मुझसे दोस्ती करने का ये भी एक कारण रहा हो। दोस्ती तो खैर सबसे थी, लेकिन मीनाक्षी को मुझसे और मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही नस्बत थी। वो वक्त बेवक्त मेरे घर आ जाती थी, ये देखकर उसकी कुछ सहेलियाँ अक्सर जल उठती थी और वे मुझसे अक्सर तमाम बातें कहती रहती थी, जैसे कि आपको मालूम है अंकल आज मीनाक्षी ने क्या किया, आज बस की स्ट्राइक थी, हम लोग फंस गए, लेकिन मीनाक्षी की एक रिक्शे वाले से क्या दोस्ती है, बाप रे, वो उसे उसके घर तक छोड़ गया। और कभी ये कि अरे मीनाक्षी इज अ फ्लर्ट, आप कहिएगा मत अंकल कि मैंने आपको बताया, बट यू नो ना, और ऐसी ही तमाम और बातें। हालांकि ऐसी बातों का मेरे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता था और ना मुझे इस सबसे कोई फर्क पड़ता था। हाँ, कभी कभी मेरे दिल में आता था कि शायद मीनाक्षी के दोस्त मुझसे उसी दोस्ती की दरकार रखते हैं जैसी कि मेरी और मीनाक्षी की है, और शायद इसीलिए ये सब कहते रहते हैं, क्योंकि वे देखते तो थे कि मैं अक्सर शाम को मीनाक्षी और मंदार के साथ आइसक्रीम खाने चला जाता था। फिर आइसक्रीम खाकर हम लोग देर रात घोड़ बंदर के समुद्र तट पर चक्कर लगाया करते थे। उस समय वहाँ नई नई बिल्डिंगें नहीं आई थीं और वह इलाका बहुत ही शांत होता था। एक दिन भागवत यहाँ दरवाजे में दाखिल होने के साथ मंदार की ऊँची ऊँची आवाज़ सुनाई दी। माला काही माहिती नाही, माला हे पाहिजे बस, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे ये चाहिए बस। वह अपने पिता पर बेतरह जिद और बेतरह गुस्से से चीख रहा था। मुझसे कोई परहेज नहीं था, इसीलिए किसी ने कोई बात बदलने या छुपाने की कोशिश भी नहीं। क्या बात है, मैंने ताज्जुब से पूछा। ये लड़का ना भाई साहब, मिसेज भागवत बोली, चेन के लिए जिद कर रहा है। देखो ना अंकल, मैं 10th में आ गया, इतना बड़ा हो गया, एक चेन तो गले में मांगता है कि नहीं। आधा इंच मोटा चेन, अनिकेत ने मुझे देखकर कहा, इसको आधा इंच मोटा चेन मांगता है, कहां से लाऊं मैं इतना पैसा। माला नहीं माहिती, माला पाहिजे बस। मैंने हालांकि मंदार को समझाने की कोशिश की कि अनिकेत इतना पैसा कहां से लाएगा। पहले वह अड़ा रहा, फिर मुझे लगा कि वो शायद समझ गया है और वह अपना तकासा छोड़ने को तैयार हो जाएगा। 3 दिन बाद इतवार था और शाम को मेरी और मीनाक्षी की कॉफी डेट थी। 7 बजे वह आ गई। इधर उधर की बातों के बाद उसने बताया, आपको मालूम है अंकल, डैडी ने मंदार के लिए आधा इंच की चेन बनवाने को दे दी। वो तो कह रहे थे इतना पैसा कहां से लाऊं। उन्होंने लोन ले लिया, वो मंदार को कुछ भी मना नहीं करते। क्यों, वो लड़का है ना, माने। मेरे इस माने के जवाब में मीनाक्षी ने कंधे उचकाकर एक छोटी सी टेढ़ी मुस्कान के साथ क्या पता कि मुद्रा में हाथ का पंजा हिला दिया। एक दिन शाम को मंदार का फोन आया, कल मेरा बर्थडे है अंकल, आपको आना है, कल मेरी रिकॉर्डिंग है, हो सकता है मैं लेट हो जाऊं। लेट तो लेट, लेकिन आप आइएगा जरूर, 12 तक तो हम लोग वैसे भी जागते ही रहते हैं। उस रात पवई वाली सड़क पर रोजाना से कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक जाम था और ठाणे के टोल नाके पर भी बेतरह लंबी लाइन थी। 1 घंटा तो यूं ही लेट हो गया, मैं पहुंचा तो 11 के आसपास हो रहे थे। जाहिर है पार्टी तो खत्म हो चुकी होगी, लेकिन लड़के ने बुलाया था तो जाना ही था। मैं पहुंचा तो मीनाक्षी ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा रही थी। तेरा जन्मदिन था, तेरे दोस्तों ने खाया पिया गंदा किया, सफाई तो बेटे तुझे करनी चाहिए, ये क्या कि गंदा तुम करो और साफ तेरी बहन करे। मैंने हंसी हंसी में कहा, लड़की है ना भाई साहब, मिसेज भागवत ने मेरे सामने तश्तरी में केक का टुकड़ा रखते हुए कहा, यह सब काम तो लड़कियों का ही है। वो जमाने गए भाभी जी, वैसे भी लड़कों को अब सब कुछ आना चाहिए, उसे तो दूसरे घर जाना है ना, उसे सब आना चाहिए, इसका क्या है, लड़का है, लड़का तो इधर ही रहने वाला है। बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। ये देखो अंकल, मंदार ने अपने गले में डली आधे इंच मोटी सोने की चेन मुझे दिखाते हुए कहा, अरे वाह, लेकिन उस दिन तो ये था कि मैं इतना पैसा कहां से लाऊं। मैंने मंदार की चेन से नजर हटाकर अनिकेत की तरफ देखते हुए दरियाफ्त किया, 20,000 तो थे, 25,000 की मीनाक्षी की एफडी तोड़ी, थोड़ा सा लोन ले लिया, हो गया। पैसा तो मंदार के पास भी होता, होता तो कम से कम इसके पास 50,000 निकलता, लेकिन ये उड़ाता बहुत है, मिसेज भागवत ने मजा लेते हुए शिकायत के स्वर में कहा। तो मीनाक्षी का एफडी क्यों तोड़ दिया, उसका पैसा तो उसका है, वो तो पॉकेट मनी और गिफ्ट जोड़ जाड़ कर करती क्या है, वो पैसे का बचाती ही तो रहती है, मिसेज भागवत ने मेरी बात काट कर कहा। कभी कभार मेरे तमाशे में जाती है तो इधर उधर का कुछ सामान ले लेती है, या फिर कभी कॉलेज कैंटीन में थोड़ा बहुत खर्च करती है, बस इसका खर्च ही क्या है, अनिकेत ने हंसते हंसते कहा। वो पैसा बैंक में रख के करेगी क्या, इसकी सारी जरूरतें तो वैसे भी हम लोग पूरी करते रहते हैं। लड़कियों को भाई साहब अभाव की आदत होनी चाहिए, जाने कैसा घर मिले, कैसे हालात मिले। छोड़ो अंकल ये सब, मंदार ने अपनी घड़ी दिखाते हुए कहा, ये देखो मेरे एक दोस्त ने प्रेजेंट की है, अच्छी है ना। घड़ी देखने, केक खाने और बातचीत के सिलसिले में रात के 12:30 बज गए और वो दिन और वो बातें तमाम हो गए। मीनाक्षी ने बीकॉम पास कर लिया था और मंदार को कॉलेज में दाखिला समझिए कि मिल ही गया था, शायद अनिकेत को भी एक प्रमोशन मिल गया था। सारा कुछ बड़े इत्मीनान और सुचारू रूप से चल रहा था। इसी के चलते भागवत परिवार ने हफ्ते भर के लिए सिंगापुर ट्रिप का प्रोग्राम बनाया। कहा तो मुझसे भी था कि चलो, लेकिन ना मैं जा सकता था ना ही गया। जिस टीवी चैनल में मैं काम करता था उसकी हालत खस्ता से खस्ता तर होती जा रही थी और उसमें काम करने वालों की नौकरियों को खतरा बढ़ गया था, और सीनियर पोजीशन पर होने के नाते खतरा सबसे ज्यादा मेरी नौकरी को था। खैर, भागवत परिवार शुक्रवार की रात को जाकर दूसरे शनिवार को वापस आने वाला था। उनके जाने के 2 दिन बाद रविवार की शाम को ही मेरे घर मीनाक्षी आ गई। तुम सिंगापुर नहीं गई? क्यों, मैं लड़की हूं ना? तो डैडी ने कहा कि तुझे तेरा पति घुमाएगा, लेकिन मंदार तो गया है, वह तो लड़का है। फिर उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ कहे बगैर सीधे कहा, अंकल अकेले रात में डर लगता है, आप चल के वहाँ सोएंगे प्लीज़? तुम यहीं सो जाओ और जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते यहीं पे रहो। नहीं अंकल, बस रात में, दिन में उन्होंने अगर फ़ोन किया और मैं घर पर नहीं मिली तो वह मुझ पर शक करेंगे कि मैं कहीं किसी के साथ। वॉट नॉन सेंस, जाने दो अंकल, मैं रात को यहीं सो जाऊंगी। ठहरो, मैं अपने दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। खाना तो यहाँ भी बना है। अरे नहीं नहीं अंकल, मैंने बहुत अच्छी भिंडी बनाई है, मैं लाती हूँ। भागवत परिवार सिंगापुर से तमाम तस्वीरें यादें भेंटें लेकर वापस आया तो दिल में तो मेरे आया कि एक बार पूछो कि भाई मीनाक्षी को साथ ना ले जाने के पीछे क्या वजह थी। लेकिन इस तरह की बात ना कभी निकली और ना मैंने ऐसा कुछ पूछने की जरूरत समझी। आखिर मैं था कौन? दोस्त ही तो था, उनके पारिवारिक मामलों में दखल देने का अधिकारी तो नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि कहीं वे लोग ये ना समझ लें कि मीनाक्षी अपने घर की हर बात मुझे बता देती है। लेकिन बात तो मेरे दिल में थी, सोचा इस तरह नहीं तो इसका हल दूसरी तरह से खोजा जाए। अब तो ये लड़की ग्रेजुएट हो गई अनिकेत, एक दिन मैंने कहा इसके लिए एक ठीक ठाक लड़का ढूंढो, मैं भी इसकी शादी में साफा वाफा बांधूं। वही चालू है, लेकिन हमारे गोत्र में जाति बिरादरी इन सबके बड़े चक्कर है यार, एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता। मैं तो खुद चाहता हूं जल्दी से जल्दी शादी कर दूं इसकी, घर जाए अपने। बीकॉम की बात, मीनाक्षी ने पढ़ाई छोड़ दी। मंदार जब से कॉलेज पहुंचा उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए जिनसे वह गंदे शब्द बोलना भी सीख गया था और उसका हाव भाव एकदम दादाओं जैसा हो गया था। कभी भी किसी को डरा धमका देना, दो चार तमाशे जड़ देना, उसे अपने दोस्तों का भी साथ था और शायद कहीं इस बात का भी एहसास था कि उसका बाप पुलिस में है। वह घर में बाप से भले ही जरा लिहाज कर जाता था लेकिन माँ से बिल्कुल नहीं डरता था और मीनाक्षी को तो बाकायदा किसी नौकर की तरह डांट देता था। अनिकेत सब जानते हुए भी उससे कुछ नहीं कहता था, वो लड़का है ठीक हो जाएगा कहकर टाल देता था। मीनाक्षी जब से पढ़ाई छोड़कर बैठी थी घर के काम की सारी जिम्मेदारी उस पर थी, झाड़ू पोछा लगाने से खाना पकाने और खिलाने तक की। खाने में रोटी सबको गर्म गर्म चाहिए होती थी, खासकर मंदार को, वो भी दोनों वक्त। जब वो खाना खाने बैठे रोटी उसके लिए उसी वक्त बनी। बरसात शुरू हो चुकी थी, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। मैं घर पर बैठा कुछ पढ़ रहा था, रात के 9 बजे की बात होगी, दरवाजे पर घंटी बजी। मीनाक्षी थी, बगैर कुछ कहे सुने सीधे अंदर आ गई, बैठ गई। क्या हुआ, मैंने पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके करीब गया, उसके लटके हुए चेहरे को मैंने थोड़ी से अपनी तरफ किया तो देखा उसके चेहरे का बाईं तरफ नीला पड़ा है और उसकी तरफ की आंख में खून उतर आया है। क्या हुआ, वो लड़की सबक सबक कर रो। अरे हुआ क्या, मुझे मंदार ने बहुत मारा। क्यों, मैंने उससे कहा खाना रखा है गर्म करके खा ले, मेरी तबीयत खराब है मैं लेटी हूं, तो उसने मुझे छड़ी लेकर बहुत मारा। अरे ऐसा पहले तो कभी नहीं किया उसने, वो हमेशा मुझे मारता है और मम्मी डैडी उससे कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जाने दो लड़का है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं इस आहत मन लड़की से क्या कहूँ या उसके लिए क्या करूँ। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी कहूँ वो धाड़ मार कर रो पड़ी। बोली मेरी तबीयत खराब है, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मेरे सर में पीठ में दर्द है, मैं आज पूरा दिन उपवास से थी, तो एक दिन मैंने अगर उसके लिए गर्म रोटी नहीं बनाई और अगर एक दिन वो अपना खाना गर्म करके खा लेगा तो क्या हो जाएगा। तुम यहाँ कैसे आ गई, घर में कोई नहीं है, डैडी मम्मी किसी के घर गए हैं और मंदार मुझे मारने पीटने के बाद किसी होटल में खाना खाने चला गया है। जैसा शुरू में कहा गया वो मेरे सीने से लगकर रो रही थी, मुझे उसकी तकलीफ से बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद मेरी मजबूरी थी कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद जब भी मीनाक्षी के बारे में सोचता तो मुझे याद आता वो बात याद आती जो उसके दोस्त मुझसे कहा करते थे, मीनाक्षी फ्लर्ट है अंकल, वो बात मेरी समझ में अब आई, जरूर होगी, ऐसे शख्स को तो होना ही होगा, आखिर कहीं तो इंसान को मोहब्बत, कुर्बत, सहयोग, हंसी मजाक, दोस्ती, सपोर्ट और अपने वजूद का और अपनी अच्छाइयों का अप्रूवल चाहिए ना। घर पर ये सब ना मिले तो बाहर सही, फिर लोग चाहे इस तलाश को फ्लर्ट होना कहें या कुछ और। बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि मीनाक्षी की मदद करने के लिए क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि जो कुछ करने को था वो तो भागवत परिवार को ही करना था और उसमें कुछ कहना दखलंदाजी होता। इस बार काफी अरसा बीत गया, तकरीबन 2-3 महीने मीनाक्षी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, वजह कुछ खास नहीं, बस यूं ही। दिसंबर की शाम को एक दिन टेलीफोन की घंटी बजी, मीनाक्षी थी। अंकल कैसे हो? अरे तुम हो, कहाँ हो, बहुत दिन हुए तुम्हारी आवाज सुने। अंकल आपको मालूम है मैंने शादी कर ली। शादी? मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। हाँ मैंने भाग के शादी कर ली, मेरे माँ बाप मेरे लिए पक्का शुद्ध ब्राह्मण ढूंढ रहे थे ना, मैंने एक चमार से शादी कर ली, अब सारा जीवन तड़पते रहेंगे, हु केयर्स। फिर उसने लाइन काट दी। अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार की लिखी कहानी हु केयर्स। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।